तो यहां तक आज का हमारा सबक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तौहा, तौहा ये हरूफे मुकत्तआत हैं, और इससे पहले भी हम हरूफे मुकत्तआत वाली सूरतें देख चुकी हैं। मैंने जैसे आपको बताया था 28 जगहों पर कुराने पाक में सूरतें स्टार्ट होती हैं हरूफ मुकत्तआत से, और अक्सर जगहों पर आप देखेंगे कि उसके बाद कुराने करीम का जिक्र आता है। तो ये हरूफ मुकत्तआत क्या है? बाज ने इसका तर्जुमा ये किया कि तौहा अल्लाह ताला का नाम है, बाज ने कहा कि इसका मतलब होता है या हबीबी, है मेरे महबूब। तो वल्लाहु आलम, बाज कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये नाम है। तो लेकिन इनमें से कोई भी ऐसी रिवायत नहीं है या कोई ऐसी चीज नहीं जिससे कि हम हतमी तौर पे कह सकें कि हाँ यही मतलब है। हम ये नहीं जान सकते। ये सारी राय हैं मुफस्सिरीन की कि ये भी मतलब हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन कोई हतमी राय, एक आदमी भी इसका मतलब लिया गया। तो इसके बारे में हमेशा याद रखें, जो जो मुफस्सिरीन और सहाबा और ताबईन कहते थे ना, वो ही हम भी कहेंगे। और वो ये कि वल्लाहु आलमु भी मुरादी, अल्लाह ताला ज्यादा जानता है इसकी मुराद को। ठीक है, तो ये याद रखें कि जब भी हरूफे मुकत्तात आप देखेंगे इस तरह के ब्रोकन लेटर्स, तो आपने यही कहना, अल्लाह ताला के अलावा इसकी मुराद को कोई नहीं जान सकता, हमें नहीं पता कि इसका क्या मतलब है। तो फिर सवाल यह कि फिर कुरान में ऐसी बातें क्यों आई? कुरान तो सारा इसके लिए है कि हमें समझ आए और हमारी रहनुमाई के लिए है, तो फिर कुरान में ऐसी बात क्यों आई जिसका माना ही हमें पता नहीं? तो बात यह है कि हमें माना नहीं पता, मगर ये मतलब नहीं कि इसका कोई माना ही नहीं है, क्योंकि बाज लोग ये भी कह देते हैं इसका कोई माना ही नहीं है। तो फिर बेमानी चीजें हैं कुरान पाक में, अस्तग़फिरुल्लाह, कुरान में कोई बात बेमानी नहीं है। तो माना तो है मगर हमें नहीं पता। अच्छा, फिर वही वाली सवाल आ गया ना कि फिर या कुरान में ऐसी बात क्यों आई है कि जो हमें पता ही नहीं है, तो फिर यहाँ पर डालने की जरूरत क्या? इसका भी आपको जवाब मालूम होना चाहिए। पर ये जो हमें नहीं पता, और जिस सूरत से पहले भी ये ऐसे हरूफ आते हैं, तो वो हमें कुछ समझाने के लिए आते हैं। क्या समझते हैं आप? इतनी दफा आपने तो ऐसी सूरतें देख ली हैं, तो अब आप बताइए ना कि क्या आपको क्या समझ आती है इस बात से कि हमें इसका माना नहीं पता, ये हर दफा मैं आपको बता देती हूँ, तो फिर क्यों आया कुरान पाक में? असल में एक बात बहुत अच्छी तरह ताकि हमें समझ आ जाए। आप देखिए सूरह बकरा भी स्टार्ट होती है ना, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। तो क्या समझाना है हमें कि तुम जितना भी इल्म हासिल कर लो, जितने भी ऊपर चले जाओ, मगर आखिरकार कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जो तुम नहीं जानते होगे, तुम्हें नहीं इल्म होगा। ठीक है, तो ये एक इल्म वाले का इम्तिहान होता है कि वो आगे से कह दे कि मैं नहीं जानता। जैसे इमाम मालिक के पास एक गुरु आया था ना, उन्होंने सवाल किए थे उनसे, 40 सवाल किए, इमाम मालिक हर सवाल पे कह रहे हैं मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे ला अदरी ला अदरी ला अदरी। वो कहते हैं हम जाके अपनी कौम को क्या बताएंगे कि इमाम मालिक इतना बड़ा इमाम और वो कह रहा है मुझे नहीं पता? तो कहते हैं हाँ, उसको कह देना कि मालिक को कुछ नहीं पता। ठीक है, तो यानी अल्लाह ताला हमें घुटने टेकने पे ला देता है, मजबूर कर देता है कि हम कहें कि हमें नहीं पता। तो इस माइंड सेट के साथ कुरान के आगे बैठो कि मुझे नहीं पता, इसके साथ मत बैठो कि मुझे सब कुछ पता है। बात समझ आई? अगर कोई कुराने पाक के सामने ये सोच के बैठता ना, मुझे तो चीज सब आता है, मैं वैसे ही आ गई हूँ। जैसे हमारी माशाल्लाह कुछ स्टूडेंट्स ऐसी हैं कि जो कहती हैं कि हमें तो पहले ही बहुत आता है, हमने तो इतने कोर्स किए हैं, तो हम तो वैसे ही आ गए मैं इस क्लास में, चलो हमने कहा आपको कुछ नहीं यहाँ से नफा हासिल होना। फिर क्योंकि इंसान को नफा वहीं से हासिल होता है जब वो ये कह देता है मुझे नहीं आता, जब वो तालेबे इल्म बन के आता, इल्म का तलब करने वाला। और अगर आप सोचते हैं मेरा बर्तन पहले ही इतना भरा हुआ है, मुझे क्या जरूरत है, मैं तो वैसे ही आ गई, चलो देखती हूँ, तो फिर क्या लेंगे यहां से। दूसरे ये भी बात है कि इसमें अपनी तरफ तवज्जो मबजूल करने के लिए ये ऐसे लेटर्स आते हैं, यानी अगर सोचे ना कोई अपने ख्यालों में गुम बैठा हुआ है, तो कोई भी बात किए जाए तो उसको कुछ नहीं, वो अपनी कहीं और ही पहुंचा हुआ है, तो एकदम कोई कहे तोहा, तो आप चौंक जाते हैं कि क्या बात हो गई ना, तो मुतवज्जे होते हैं ना, तो इसलिए ये हरूफ मुकतआत अपनी तरफ तवज्जो मबजूल करवाते हैं। मा अंजलना अलैकल कुरआन लितश्का, नहीं नाजिल किया हमने आप पर ये कुरान कि आप मुश्किल में पड़ जाएं। कुराने पाक को नाजिल करने का पर्पज ये नहीं है, ये मकसद नहीं है। देखें अंजल इंजाल जो होता है ना, वो एक इंजाल है, आके नज़ल है, इंजाल होता है एक ही दफा में नाजिल करना, और दूसरा ये लाजिम भी है, नज़ला मुतादी है, सॉरी नज़ला लाजिम है और ये मुतादी है, यानी है किसी ने नाजिल किया। तो कुराने पाक का जो नजूल है वो इसलिए नहीं अल्लाह ताला ने नाजिल किया कि आप मुशक्कत में पड़ जाए, आपकी जिंदगी हार्ड हो जाए, ये सुभान अल्लाह, ये तो सरासर रहमत है, ये जिंदगी मुश्किल बनाने के लिए नहीं है। और अक्सर हमारे लोग कुराने पाक की तरफ क्यों नहीं आते, इसलिए कि वो कहते हैं हम आ जाएंगे ना, पता नहीं कुरान ने हमें क्या कर देना है, या क्या कितनी मुश्किल हमारी जिंदगी बन जाएगी, हमारे ऊपर क्या गुजरेगी, पता नहीं वो क्या सोचते हैं, वल्लाहु आलम उनके जहन में एक चीज होती है कि पता नहीं कुरान पढ़ने लग गए ना हम इतने पता नहीं ऐसे हो जाएंगे, हमारे सारे काम रुक जाएंगे, हमारी जिंदगी आगे नहीं चलेगी, हमारा ये काम कैसे होगा, हमारा हर काम उनको याद आ जाता है, बच्चों को कैसे देखेंगे, घर को कैसे देखेंगे, मेरे तो और भी बहुत सारे काम होते हैं वो मैं कैसे करूंगी। तो ये कुरान आपके ऊपर मुशक्कत डालने के लिए तो नहीं आया, आपकी जिंदगी को हार्ड करने के लिए तो नहीं आया, ऐसे ऐसे बचते हैं जैसे कि पता नहीं क्या, यानी इंसानों ने इसको क्या समझा हुआ, मुशक्कत की चीज, तकलीफ की चीज, ये तकलीफ तो नहीं है, ये क्या है, इल्ला तस्कीरतन लिमन यख्शा, ये तो एक नसीहत है मगर उसके लिए जो डरता है। देखिए हम ये बात है कि इंसान जो है कुराने पाक की तरफ जब आने लगता है ना, शैतान उसको ऐसा बहकाता है कि तुम्हारे लिए तो बड़ा मुश्किल है, हाँ ये तो बड़ा वो ऐसे है, तुम कैसे करोगी, तुम्हारे पास तो काम ही इतने हैं, उस वक्त उसको सारे दुनिया के काम भी याद आने लगते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने इसको मुश्किल नहीं बनाया और मुशक्कत नहीं बनाया, जैसे इंसान सोचे कि जिसको के जैसे मैंने आपको बताया तशका का मतलब बदबख्ती भी है, तकलीफ भी है, मुसीबत नहीं बनाया इसको, इसको मुसीबत ना समझे, ठीक है। कुरान का मतलब क्या है, औरा आ से पढ़ना, और कुरान है, औरा आ होता है ना पढ़ना, कुरान जैसे रहमान, ठीक है, रहमान में क्या बहुत ज्यादा रहम करने वाला, एग्जेजुरेशन है ना, और बार बार रहम करने वाला, मुसलसल का माना भी है, तो कुरान जो बहुत ज्यादा पढ़ा जाने वाला, बार बार पढ़ा जाने वाला, मुसलसल पढ़ा जाने वाला, तो एक तो ये कि बहुत बड़ी तादाद में लोग इसको पढ़े और एक बंदे के ऊपर लिखे तो बार बार इंसान उसको पढ़े जिसको वो कलाम है ये, तो क्या वाकई हमारी जिंदगी में ऐसा ही है कि बार बार हम इसको पढ़ते जाते हैं, बार बार पढ़ते जाते हैं, नमाज की बात नहीं कर रही, नमाज में तो सारे ही पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके अलावा क्या हम कुरान, कुरान का जो वर्ड ही आता है ना वो ही आपको बताता है कि ये एक रिमाइंडर है हमारे लिए कि मैंने इसको बार बार पढ़ना है, क्योंकि इसका वर्ड ही, इसका नाम ही ऐसा है कि बार बार पढ़ी जाने वाली, तो वाकई मैं बार बार पढ़ती हूँ। और कुरान के बारे में बाज ने इसको कौफ रा हमजा से किया और बाज ने कौफ रा नून से इसका रूट वर्ड बताया, तो कुरान जैसे करीन होता है साथी, उससे है, करना का मतलब होता है जोड़ना, तो करीन साथी, यानी ये करीन है, ये साथी है, ये नहीं कि फिजिकली सिर्फ साथी है कि चलो मैंने कुरान पाक अपने पर्स में भी रखा हुआ है और मेरे घर में भी जगह जगह पड़ा हुआ है तो बस मेरा साथी हो गया, नहीं, साथी वो होता है जिसके साथ इंसान बहुत ज्यादा टाइम गुजारता है, फिर ही आप उसको साथी कहते हैं ना, तो ठीक है आपके पास फोन में है ऐप है और वो ना आपके पास हर वक्त रहता है, तो इसलिए मेरे मेरा साथी हो गया, ये नहीं। सब वक्त गुजारे, कितनी दफा आप उस ऐप को खोलते हैं, कितना उसके साथ वक्त गुजरता है, क्योंकि साथी तो वो होता है कि जरा सी भी देर उससे बात ना हो तो आप फौरन उसको कॉल करते हैं, फौरन उसी तरफ उसका हाल अहवाल पूछते हैं, वही साथी होता है। साथी ये तो नहीं होता कि आपको कई कई दिन उसकी खबर ही नहीं। वो है जिसके साथ ज्यादा वक्त गुजरे, कितना वक्त गुजरता है कुरान के साथ। कि कभी मैं इसका नाजरा पढ़ रही हूँ, कभी तर्जुमा याद कर रही हूँ, कभी मैं इसको हिफ्ज कर रही हूँ, कभी मैं इसकी आयतों को समझने के लिए इसकी तफसीर पढ़ रही हूँ। यानी ये मेरा ताल्लुक मुसलसल इसके साथ, कि ये मेरा साथी कहलाए। क्या मैं और आप ये कह सकते हैं कि मेरा साथी कुरान है? ये ऑनेस्टली बताएं, मेरा इतना वक्त इसके साथ गुजरता है कि मैं इसको आप करीन कह सकती हूँ, कि मेरा करीन है, मेरा साथी है, ऑनेस्टली। कि जिसको थोड़ी देर को भी मैं इससे दूर हो जाऊं तो मैं बेचैन हो जाती हूँ, और मैं कहती हूँ कि मैं जल्दी से खोलूँ फिर दोबारा। मुझे किसी का पता चला था कि उन्होंने बताया कि इतना वाकई वो फिर करीन की मिसाल है, कि उन्होंने कहा इतना ज्यादा वो फलां कोई है जो कि कुरान की इतनी शौक रखते हैं कि जरा सी देर होती है ना वो फौरन कहीं पे भी बैठे हैं फौरन कुरान खोल लिया, कहीं गए हैं फौरन कुरान खोल लिया, जरा सा भी 5 मिनट में मिले हैं वो फौरन कुरान खोल के बैठ जाते। यानी थोड़ी जरा मौका मिला फौरन कुरान को खोला उसके साथ बैठ कर। तो ये है कुरान का करीन बनना। तो हम देखें हमारी जिंदगियों में कैसे है ये। आपको टेस्ट भी इसलिए दिया जाता है कि ये आपका करीन बन जाए। जाहिर है जब टेस्ट आता है तो आपको ज्यादा इसके साथ वक्त लगाना पड़ता है, तो ये तो एक बहाना होता है, नंबर नहीं, बहाना है ये सिर्फ कि आपका वक्त इसके साथ गुजरे, आपको तरीका आए कि कैसे मैंने इसके साथ ज्यादा बैठना है। और लीता शका, ये इसका शान नजूल ये है कि जब मुसलमान ना उनके साथ ये हो गया था कि इब्तदा में जब कुरान पाक नाजिल हुआ वो साथ साथ याद करते थे, और साथ साथ वो अपने उसमें पढ़ते थे, नमाजों में भी, इसमें भी, तहज्जुद में भी। जैसे जैसे कुरान का हिस्सा बढ़ने लगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी और सहाबा कराम भी तमाम रात इबादत के लिए खड़े रहते थे, नमाज तहज्जुद में उसको तिलावत करते रहते थे। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो पैर मुबारक पर सूजन हो गई थी, और दिन भर इसकी फिक्र में रहते थे कि किसी तरह इन लोगों को हिदायत मिल जाए, कुरान की दावत देते रहते थे। तो इस आयत में अल्लाह ताला ने अपने नबी को इन दोनों किस्म की मुशक्कत से बचाने के लिए फरमाया कि हमने ये इसलिए तो नहीं नाजिल किया कि आप मुशक्कत में पड़ जाए, ये तमाम रात आप जागे हुए हैं, तमाम रात आप इसकी तिलावत में लगे हुए, इसकी जरूरत नहीं है। इस आयत के नजूल के बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल भी बन गया था कि शुरू रात में आराम फरमाते थे, तो आखिरी रात में जाके तहज्जुद अदा करते थे। ठीक है, तो इस तरह इस तरफ इशारा है, और ये कि भाई आप इसको ऐसे मुशक्कत ना बनाए। और फिर काफिर भी ताने देना ही शुरू हो गए थे कि इन बेचारों को तो देखो कुरान इनके ऊपर क्या आया, इनकी तो जिंदगी मुसीबत हो गई, कितनी मिजरेबल लाइफ है इनकी। आपको तो नहीं कभी कोई कहता कि ये क्लास क्या लेने शुरू हो गई, बेचारी की जिंदगी मुश्किल में पड़ गई, हर वक्त बस इसका क्लास का ध्यान ये वो। अरे क्लास क्या, कुरान ही है, यहाँ पे किसी की पर्सनल बातें तो नहीं हो रही, ठीक है, कोई और इधर उधर की तो कोई भी बात नहीं होती। तो ये कुरान के, जब से ये कुरान के साथ जुड़ी है बस से, तो बेचारी की जिंदगी मुश्किल हो गई। तो फरमाया नहीं, ये इसलिए नहीं है, ये बोझ नहीं है, ये बोझ नहीं है, ये बदबख्ती नहीं है, ये तकलीफ नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इस चीज को, खैर हम तो कोई रात रात भर नहीं पढ़ते तो इसलिए हमारा वो वाली तो चीज नहीं है, लेकिन ये देखना चाहिए कि अगर कभी कोई कहे कि कुराने पाक की तरफ आने की वजह से इसकी जिंदगी मुश्किल में पड़ गई तो नहीं, मा अनजलना तशका। ठीक है, दूसरे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेचर ऐसी थी कि जब अल्लाह ताला ने एक दफा जिम्मेदारी आप पे डाल दी ना, तो अल्लाह ताला को कभी रिमाइंड नहीं कराना पड़ा कि आप ये काम कर भी लें, आप कर भी लें, आप याद याद है आपने इस काम की कमिटमेंट की थी। जैसे हम लोग करते हैं कि हम जिम्मेदारी तो ले लेते हैं कि हम इंचार्ज बन गए या लीडर बन गए या हम मैं बड़ी एडमिन बन गई, तो अब उसके बाद बार बार याद दिलाना पड़ता है बहनों काम कर लो, अपना शौक से कर लो, देखो ये काम आपने इसकी जिम्मेदारी ली है, प्लीज इस काम को अच्छे तरीके से करें। वो याद ही नहीं रहता, बस उसका शौक है कि मेरे पास जिम्मेदारी आ गई और मैं मुझे ये बड़ा ऑनर मिल गया, उसके बाद नहीं याद रहता। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला उलट था, अल्लाह ताला को ये कहना पड़ा कि आप अपनी जिम्मेदारी के मामले में इतनी अपने आप पे सख्ती ना करें, इतना ना अपने आप पे बोझ डालें, ये हमने आपकी जिंदगी मुश्किल थोड़ी बनाने के लिए भेजा है। ठीक है, तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईशा के बाद सोना शुरू किया था, और आप सल्लम का तो स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा था ना, उनका गम क्या था कि वो बेचैन होते थे कि ये लोग क्यों नहीं समझ लेते, क्यों नहीं मान जाते, इनको क्यों नहीं हिदायत इनके दिल में चली जाती। इस वजह से इतना गम करते थे। और आप देखें कि ये आप सल्लम की हदीस से भी पता चलता है, फरमाया ना, मेरी मिसाल और तुम्हारी मिसाल तो ऐसे जैसे किसी ने आग जलाई और पतंगे उसमें जा जाके गिरते हैं, और एक आदमी है जो उनको बचा रहा है, उनको हटा रहा है इस आग से, लेकिन वो है कि वो जा जाके पड़ रहे हैं। तो फरमाए मेरी तुम्हारी मिसाल ऐसे ही, यानी जैसे कि एक आग जली हुई है और लोग आग में जा जाके गिरने लगे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमर से पकड़ पकड़ के लोगों के आग से बचाना चाह रहे हैं, लेकिन लोगों का हाल ही है, उन्होंने कहा हमने तो आग में गिर के रहना। सोचिए ये आपकी हालत थी, नहीं कैसे उनको फील होता था। तो अल्लाह ताला ने बता दिया आप इतने ज्यादा अपने आप को हलकान ना करें, इतना ज्यादा इन चीज के इन इन के पीछे ना अपने आप को यानी तकलीफ में रखें। तो कुरान मुशक्कत के लिए नहीं है, ये रहमत है। बल्कि एक हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कयामत के दिन जब अल्लाह ताला बंदों के अमाल का फैसला करने के लिए अपनी कुर्सी पर तशरीफ फरमा होगा, तो उलामा से फरमाएगा, इल्म वालों से, कि मैंने अपना इल्म और हिकमत तुम्हारे सीनों में सिर्फ इसलिए रखा था कि मैं तुम्हारी मगफिरत करना चाहता था उन खताओं की जो तुमसे सरजद हो गई हैं, और उनको माफ करना चाहता था, और मुझे कोई परवाह नहीं कि मैं माफ कर दूं। यानी ये इल्म इसलिए नहीं दिया था कि तुम्हें मुसीबत में अल्लाह ताला डाल दे, बल्कि ये इल्म किस लिए दिया था अल्लाह ताला ने, ताकि तुम्हें बख्शे। सुभान अल्लाह। तो आप समझ आ गए कि किस तरह की मुशक्कत थी, कि जैसे जैसे कुरान नाजिल हो रहा था तो आप सारी सारी रात जागते थे इससे भी, और दूसरे इनके ऊपर जो गम था, जो तकलीफ, जो इनकी वजह से अफसुदगी और जो अफसोस इनके ऊपर, वो उससे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया गया कि आप ना अपने आप को तकलीफ में डालें। ये तज़किरा है, जिक्र है, नसीहत है आपकी, यानी जिम्मेदारी तो सिर्फ पहुंचा देना है। आप इतने अफसोस में ना जाएं कि ये क्यों नहीं मान रहे, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी तज़किरा है कि तज़कीर कर दें, नसीहत कर दें। कोई ईमान लाता है लाए, नहीं लाता तो ना लाए, ठीक है। किसके लिए है? लेकिन लिमई यख्शा हो, यख्शा कहते हैं खशियत, ऐसा खौफ कि जिस हस्ती के लिए हो उसकी अजमत का एहसास दिल में, कि ना यानी जिसको कहते हैं ना उसकी हैबत, खशियत। देखिए एक होता है खौफ, खौफ तो किसी चीज का भी हो सकता है, मगर खशियत जो होता है ना वो डिफरेंट चीज होती है। उस लिखते तो हैं हम जो डरता हो, डर डर तो अब हर चीज का, किसी से सांप से भी कोई बंदा डर जाता है तो। लेकिन ये कुरान में खौफ का भी लफ्ज है, वो भी अरबिक का ही लफ्ज है, लेकिन खौफ और खशियत में ये फर्क है कि खशियत किसी की हैबत, किसी की अजमत का एहसास, उसकी वजह से जो दिल में रोब आ जाता है ना, वो है खशियत। तो जब इंसान को पता होता है ना कि ये कलाम करने वाला कौन है, जब इंसान उसको जानता है ना कि ये किसका कलाम है, ये कुरान किसका कलाम है, तो फिर वाकई इस कलाम का रोब भी और फिर नसीहत भी हासिल होती है। और अगर अल्लाह ताला को नहीं पहचानते ना, तो फिर ना खशियत आती है ना ही नसीहत इससे पकड़ते हैं। इसी वजह से तो कहते हैं ना, कई लोगों ने कुरान पढ़ा हुआ है, क्या बात है कि उनको कोई भी असर नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसलिए कि उनको पता ही नहीं है ये किसका कलाम है। अल्लाह का कलाम है, बस ऐसे बोल दिया। अल्लाह ताला की पहचान है, उसकी खशियत है, क्योंकि ये नसीहत उसके लिए बनेगा, लीमई यख्शा, इसमें अल्लाह ताला की अजमत का एहसास हो, वो कौन रब है, वो कौन है। ऐसे एक मिसाल से समझिए ना, कोई कह दे, ऐसे ही राह चलता कोई कह दे इसको पकड़ लो, तो कोई तो बच्चों नहीं देगा, लेकिन अगर पुलिस कहे कि इसको पकड़ो, पकड़ लो इस बंदे को, तो दिल डर जाता। और यही बात मुल्क का कोई वजीर आजम कहते कि फलां को पकड़ लो, तो सोचें ये तो ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगी। तो फर्क किस में हुआ? इसको पकड़ लो ये तो सारे ही कह रहे हैं। फर्क है स्पीकर में, कौन है स्पीकर, कौन है कहने वाला, उससे बात का असर ही डिफरेंट होता है। सोचें कायनात का रब, जिसको ये पता हो कि कायनात का रब कौन है और क्या मतलब है इसका रब होने का, वो फिर जब कोई बात कहे तो जिसको इल्म है, जिसको उसकी पहचान है ना, हो नहीं सकता उसके दिल में हैबत ना आए, उसका दिल डर ना जाए कि किसका कलाम है, रोंगटे ना खड़े हो जाए। इसीलिए तो सूरह अनफाल के शुरू में है ना कि उन लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब इस कुरान की आयतें सुनते हैं। उनको पता जो है ये कलाम किसका है, फिर वो नसीहत भी लेते हैं, फिर उनको पता है कि वो ये बातें किसने कही, क्योंकि अजमत है दिल में उसके लिए। तो बाकी लोगों के लिए ये कोई नसीहत नहीं बनता, इसलिए कि वो उनके दिल में कोई धाक ही नहीं, अल्लाह ताला की धाक बैठी ही नहीं, कोई हैबत ही नहीं, कोई अजमत का उसकी एहसास ही नहीं। तो जब ये कहा जाए ना इल्ला तस्किरा तल्लीमा यक्षा, तो फिर सोच लें कि सिर्फ और सिर्फ वो लोग यानी नसीहत पकड़ते हैं जो सिर्फ खशियत रखते हैं। तो खशियत अगर हमारे अंदर होगी ना अल्लाह ताला की, समझ आ गई ना खशियत क्या है, तो तब हम इससे फायदा उठा सकेंगे। अच्छा ये जो दो आयते हैं ना, इनको अगर मिला के एक जुमले में लिखा जाए तो ग्रामेटिकली ये डिफरेंट होगा, लेकिन इसमें तकदीम और ताखीर हुई भी है। तकदीम और ताखीर क्या होती है? कुरान पाक में कई जगह पे ये है कि जो चीज़ बाद में, वैसे अरबिक में अगर बोली जाए तो जो बाद में आनी है उसको पहले कर दिया, जो पहले आना था उसको बाद में कर दिया। और ये तब होता है जब किसी चीज के ऊपर बहुत एम्फसाइज करना हो, को बहुत ताकीद करनी हो। तो असल में इसका, इसको कैसे लिखा जाना था? मा अनजलना कुरआना अलैका इल्ला तज़किरतन लिमन यख्शा वली अल्ला तश्का, ऐसे लिखा जाना था। ला तश्का एंड में होता कि हमने नाजिल नहीं किया कुरान को मगर नसीहत उसके लिए जो डर जाए, और इस चीज के लिए नहीं कि आप मुशक्कत में पड़े, इस तरह होना था। लेकिन मुशक्कत को पहले लाया गया, लितश्का पहले लाया गया, इससे पता चलता है कि बात किस चीज पे, जोर किस पे दिया गया, लितश्का पे, कि आपको मुश्किल में नहीं डालना। इसका मकसद, मकसद जो असल है वो बाद में बताया गया, मकसद नसीहत है, ये बाद में कहा गया। और क्या नहीं करना कि आपको मुशक्कत हो, तकलीफ हो, ये नहीं है मकसद। आपको अल्लाह ताला नहीं चाहता कि आप मुश्किल में पड़ जाए, आप गम में रहें। यहां से पता चला कि अल्लाह ताला के, हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा क्या था, और नंबर टू ये पता चलता है कि अल्लाह ताला को कितनी मोहब्बत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कि उनकी तकलीफ को पहले मेंशन किया गया कि आपको तकलीफ में डालना, ये अल्लाह ताला को कहीं गवारा नहीं है। और ये भी पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इंसान थे और गम आपको भी घेर लेता था, आपके दिल को भी दर्द महसूस होता था। कोई ऐसे नहीं थे कि उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो तो इतने पहुंचे हुए थे उनको क्या फर्क पड़ता था। नहीं, ऐसे नहीं है, वो भी इंसान थे। तो अल्लाह ताला तसल्लियां दे रहा है, हमने इसलिए तो नहीं नाजिल किया। तो अब से हम कुरान को अपने लिए मुश्किल और मुसीबत ना समझें प्लीज। अब बोल के तो कोई भी नहीं कहता, लेकिन असल बात यह है कि जब इसकी तरफ आना होता है तो क्या मुसीबत लगता है या रहमत लगता है? रहमत के पर तो भाग भाग के हम जाएंगे, हम तो चाहते हैं हमें रहमतें मिले, तो फिर इसकी तरफ क्यों नहीं भाग के आते, इससे क्यों दिल में घुटन होती है? और एक और बात इससे पता चलती है कि किसी को भी उसके गम में तसल्ली दी जा सकती है। अल्लाह ताला ने अपने नबी से को डांटा नहीं कि आपने क्या गम लगाया हुआ, आपको क्या जरूरत है ऐसे, नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने कितनी प्यारी तसल्लियां दी। इससे हमें पता चलता है हम किसी को गम में देखे ना, तो ऐसे नहीं कि उसको डांट रहे शुरू जाएंगे, तुम क्या इतना कुरान पढ़ती हो और तुम ये शुरू हो गई और ऐसे कर गए, नहीं, ठीक है, उसको तसल्ली दें। ये किसी को गम के अंदर तसल्ली देना ये अल्लाह ताला की भी सुन्नत है। तंजीलम मिम्मन खलक अल-अर्द वस्समावात, ये तो नाजिल करदा है उस वक्फे वक्से से उसने उतारा, यानी ये कुरान क्या है, ये कोई मुसीबत नहीं है, मुशक्कत नहीं है, तकलीफ नहीं है, ये तो नसीहत है उसके लिए जो डरता है, ये तो उसकी तरफ से नाजिल करता है। अब इसको सीक्वेंस आप समझ रहे हैं ना, उसकी तरफ से नाजिल करता है जो कि जमीन का भी खालिक और आसमानों का भी खालिक। अब जमीन का लफ्ज यहाँ पे और आसमान जो बुलंद है, जमीन का लफ्ज पहले आया और आसमानों का बाद में आया, जबकि आप देखते हैं दूसरी जगहों पे आसमानों का हमेशा पहले आता है और जमीन का बाद में। तो क्यों ऐसा हुआ? असल में जो लोग इसी दुनिया में और इसी जमीन के साथ चिपके हुए हैं, इसी जमीन की चीजों में गर्क हैं, उनको बताया गया कि इस ये कलाम उसकी तरफ से आया जिसने इस जमीन को पैदा किया, और नजर उठा के देखो तो आसमान को भी उसी ने बनाया। ठीक है, अल्लाह अकबर। तो कुरान दिलों के लिए ऐसे है जैसे जमीन के लिए बारिश है, इस तरह दिलों को जिंदा कर देता है, जैसे मुर्दा जमीन को पर बारिश पड़ती है तो वो जिंदा हो जाती है, उस पे हरियाली आ जाती है, इस तरह दिलों में फूल पौधे उग जाती है, इस तरह दिल सरसब्जो शादाब हो जाता है, उसकी वीरानी खत्म हो जाती है, जैसे जमीन की वीरानी खत्म हो जाती है, बंजरपन खत्म हो जाता है। ठीक है, अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, और ये किसकी तरफ से है ये कलाम? ये तो उस रहमान का कलाम है। अंदाजा करें यहाँ पे अल्लाह ताला, अल्लाह नहीं आया, अर्रहमान वो तो रहम करने वाला, रहमान का ये कलाम है, इसीलिए तो सूरत रहमान में भी है ना, अर्रहमान अल्लम अल कुरआन। तो पहली बात, रहमान के रहम की मैनिफेस्टेशन, उसका इजहार कैसे हो रहा है कि उसने कुरान की तालीम दे दी, ये उस रहमान का रहम है, उसकी रहमत है तुम्हारे ऊपर, ये मुशक्कत नहीं है। वो रहमान जो अलर अर्श इस्तवा, अर्श पे मुस्तवी है, इस्तवा का लफ्ज कुरान पाक में 7 टाइम्स आया, मुस्तवी लफ्ज का मतलब है बुलंद होना, तो अर्श पे कभी आपने ये नहीं कहना वो अर्श पे बैठा हुआ है या खड़ा हुआ है या क्या, याद रखिए हमने हमेशा कहना मुस्तवी है, उस पे बुलंद है, वो कैसे है वहां पे बुलंद हमें नहीं पता, हम उसकी कैफियत नहीं जानते और ना हमने बयान करनी है, समझ आई बात? ये हमेशा याद रखेंगे आप इस तबाह के साथ इस बात। और अर्रहमान ये नहीं हम कह सकते हर जगह है, वो पत्ते के अंदर भी है, फूल के अंदर भी है, मेरे आगे भी है, इस कमरे के अंदर भी है, उधर भी है, उधर भी है, ऐसे नहीं, कुराने पाक में बार बार आता है वो अर्श पे मुस्तवी है, अपनी जात के एतबार से वो अर्श पे मुस्तवी है, अपनी सिफात के एतबार से, अपने इल्म, अपनी कुदरत, अपने देखने सुनने, इन इन सब के एतबार से वो, उसकी कुदरत हर जगह है, उसका देखना हर जगह है, उसका सुनना हर जगह है, उसने लेकिन अपनी जात के एतबार से अल्लाह ताला माफ करे, अस्तग़फिरुल्लाह, हम कहें कि अल्लाह ताला यहाँ पे इस कमरे में है, ये बहुत गुस्ताखी की बात है ना, वो लोग उसमें कह देते हैं बेध्यानी में कि अल्लाह हर जगह है, हर जगह ऐसे क्या ना, ये सही नहीं, जात के एतबार से हर जगह नहीं, वो तो अर्श पे मुस्तवी है। ठीक है, और इस चीज की तशबीह भी नहीं हमने कुछ देनी, यानी कि ऐसे वो है, ऐसे है या इस तरह से है, जैसे फलां होता है बैठता है या फलां, ना इसकी कोई तावील करनी है कि उसको एक्सप्लेन आप करने शुरू हो जाएंगे किस तरह से बैठा है या खड़ा है या क्या, वो भी नहीं करना। ठीक है, और इसी यहाँ से ये इस अल्लाह ताला के नाम से अर्रहमान को बाज मुफसरीन लिखते हैं कि अल्लाह ताला का जैसे जाती नाम है अल्लाह, इसी तरह उसका एक जाती नाम उन्होंने काउंट किया अर्रहमान, कि बाकी सारे सिफाती नाम है, तो बाज ने अर्रहमान को भी जाती नाम लिया है, इसीलिए आप कभी भी अर्रहमान रहमान नाम किसी का नहीं रख सकते, अब्दुल रहमान रख सकते हैं, अल्लाह ताला का फेवरेट नाम है, अब्दुल्लाह रख सकते हैं, ये भी अल्लाह ताला की, ये दो नाम ना फेवरेट है उसके, अब्दुल्लाह और अब्दुल रहमान, तो लेकिन सिर्फ रहमान रखना या सिर्फ अल्लाह तो कोई भी नहीं कर रखता, लेकिन सिर्फ रहमान रखना ये नहीं सही है। ठीक है, और ये अल्लाह ताला अपने अर्श पे मुस्तवी है, ऐसे ही कहना। आपको पता है अल्लाह ताला के अर्श को उठाए हुए इस वक्त 4 फरिश्ते, और जब कयामत आएगी तो 8 फरिश्तों ने उठाया होगा। और हदीस में आता है कि वो फरिश्ते अर्श को तो छोड़ें कि वो कितना बड़ा होगा, लेकिन जो फरिश्ते अर्श को उठाए हुए उसके कान की लौ, ये जो कान की वो नीचे आती ना लौ, इस जिसमें आप बाली पहनते, और कंधे के दरमियान का फासला 700 साल का है। कि कोई इंसान 700 साल तक चलता रहे तो वो इतना फासला तो सिर्फ इतना है, तो बाकी यानी ये तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना हमारे नजदीक, तो शॉर्टेस्ट है ये कान की लौ से लेके कंधे तक, तो बहुत थोड़ा सा, वो भी 700 साल का है। तो कैन यू इमेजिन कि बाकी वो कितना बड़ा होगा फरिश्ता। ठीक है, अल्लाह अकबर, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि व मा बैना हुआ हुमा व मा तहत सरा। वो है लहू, लिए उसके है, ला जो है ना तमलीक का, तमलीक का मतलब मिल्कियत, उसकी मिल्कियत है, ओनरशिप है, और उसके लिए ही है। ठीक है, यानी उसका इख्तदार है, उसी की मिल्कियत है, उसी का राज है, उसी की बादशाहत है, समझ आए? तो सारे इसके अंदर ही माने, कहां कहां पे क्या क्या ओनरशिप है उसकी, मा फिस समावात जो आसमानों में, व मा फिल अर्द और जो जमीन में, व मा बैना हुमा, और देखना कहीं ये ना भूल जाना, ये समझना आसमानों पे और जमीन पे और बीच में जो कुछ तुम देखते हो आसमानों और जमीन के दरमियान, और चौथी चीज वा मा तहत सरा। सरा मैंने आपको बताया गीली मट्टी को कहते हैं, यानी जमीन के अंदर खोते 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 आप वहां तक पहुंच जाते हैं ना जहां पे नमी आ जाती है, फिर पानी निकल आता है ना उसके बाद आगे, जो उसके भी नीचे है, इंसान ना वहां तक पहुंच नहीं सका, नीचे हजारों हजारों मील नीचे जमीन है। ठीक है, अब वहां तक तो इंसान पहुंचे ही नहीं है कि उसके नीचे क्या है, वल्लाहु आलम, अल्लाह ही का है वो सब कुछ, उसी के इल्म में है, उसी की कुदरत है, उसी की बादशाहत है। अल्लाह आलम वहां पे क्या क्या, कोई कीड़ा है, कोई मकौड़ा है, कोई क्या चीजें हैं, कोई जानदार है, कोई बेजान है, अल्लाह ताला को मालूम है। और आज तो तख्त सरा में आप देखें गोल्ड है, सिल्वर है, फिर ब्लैक गोल्ड जिसको कहते हैं, तेल है, ठीक है, सब इसमें, साहिबे सरबत भी इसी से है, सरबत कहते हैं ना, नाम भी रखते, तो सरबत मतलब जो ज्यादा, तो मालदार के लिए कहते हैं साहिबे सरबत, तो सरा उसी से है। तो सुभान अल्लाह के, तुम इमेजिन करो ये किसका कलाम तुम पढ़ रहे, वो जो अर्श पे मुस्तवी है, लेकिन उसकी बादशाहत कहाँ तक है, सिर्फ बादशाहत नहीं, उसकी मिल्कियत है, उसकी कुदरत है, उसका इल्म, उसकी पहुंच, सब कुछ बिलोंग करता है उसको, सुभान अल्लाह। तो अब आप देख लें कि कोई चीज इसके बाहर रह जाती, आसमान से तो सातों आसमान है और हर आसमान के दरमियान 500 साल का फासला है। हाँ, तो सारा ही जिसका है, सब जगह पे जिसका कंट्रोल है, तुम उसका कलाम पढ़ रहे हो, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये हैं वो बातें जो इंसान के दिल पे हैबत लेकर आती हैं, जो इंसान के दिल में अल्लाह ताला की अजमत पैदा करती हैं कि मैं किस रब के कलाम के आगे बैठी हूँ, फिर मैं तो खत्म ही हो जाती है ना, और मेरा इल्म और मेरा नॉलेज और मुझे बड़ा पता है वो खत्म हो जाता है। और ये खत्म करने के लिए तो पहला ही ये लफ्ज काफी है, तौहा। अब तुम्हें एक मुश्किल में डाल दिया ना कि तुम्हें नहीं पता इसका मीनिंग, लगा लो खोज, जितनी मर्जी लगा सकते हो लगा लो, कोई यहाँ की बात करेगा, कोई वहां की बात करेगा, कुछ भी नहीं तुम्हें पता कि ये इसका मतलब क्या है, तो मान क्यों नहीं जाते कि मुझे नहीं है, अल्लाह को पता है। घुटने टिकवा दिए इंसान के इन हरूफ मुकत्तआत ने, बेबस कर दिया ना वो, अब इधर उधर टकरे मारता फिर उसको क्या पता कि इसका क्या माना है। तो पहले ये सोच के कुरान के आगे बैठो, मुझे नहीं पता, जो मुझे मेरा रब बताएगा बस वो ही पता। वह इन तजहर बिल कौल, और अगर तुम बुलंद आवाज से बात करो, तुम पुकार के कोई चीज कहो, फइन्नहु यालम सिर्रा व अख, तो वो तो बुलंद आवाज से बात को तो वो जानता ही जानता है, वो तो उसको भी जानता है जो सिर है, राज की बात है, असरार जो है, सीक्रेट, सीक्रेटली जो कोई बात कहे उसको भी जानता है, वह अखफा, और जो सीक्रेट नहीं बिल्कुल आहिस्ता खुफिया बात है उसको भी जानता है। अल्लाह अकबर। अच्छा अब एक इसका माना आपने ये लिख लिया ना, एक माना है कि जो सीक्रेटली आपने बात की, किसी के कान में बात की, वो उसको भी जानता है, और जो दिल में छुपी हुई है। देखते हैं ए सुभान अल्लाह एक तहत सरा की बात की ना अल्लाह ताला ने, जमीन के नीचे क्या है उसको भी अल्लाह ताला जानता है, जो गीली मट्टी के भी नीचे चला जाए इंसान, कोई चला जाए वहां उसका भी उसको इल्म है और वो उसको बिलोंग करता है। और देखें उसके बाद उस बात की जिक्र किया गया जो दिल में भी नीचे है, दिल तक तो पहुंच ही किसी की नहीं, अल्लाह के वहां भी पहुंच है। आप मेरे सामने बैठे भी हो, मेरे साथ बात भी कर रहे हो, लेकिन आपको नहीं पता मेरे दिल में क्या है, सही है, लेकिन अल्लाह ताला उसको जानता है, सुभान अल्लाह। तो पहले जमीन की अता गहराइयों की बात, फिर दिल के अंदर गहराइयों की बात, वो उसको जानने वाला है, सुभान अल्लाह। अल्लाह हु अकबर। तुम लाउड बात करो वो तो सारे ही फिर भी सुन नहीं लेते, खैर वो भी हर कोई पूरी बात को समझ ही नहीं सकता, इसकी बैकग्राउंड क्या है, कभी कभी बोल के भी कोई बता दे ना बात समझ नहीं आती, लेकिन वो उसको भी जानता है, और वो भी जानता है जो सीक्रेटली तुम करो और जो दिल में तुमने रखी हुई है वो भी। एक ये माना। दूसरा माना ये है कि फइन्नहु यालमु सिर्रा, वो जानता है सिर को भी, यानी जो दिल में बात है राज की बात है, वह अखफा, जो उससे भी ज्यादा छुपी हुई है, और वो कौन सी बात है, जो सुभान अल्लाह जो अभी तक दिल में आई ही भी नहीं, अभी आनी है दिल में, वो उसको भी जानता है, अल्लाह अकबर। दिल की सोच को तो मैं भी ना जानू कि मेरे दिल में अगली सोच क्या आनी है, और मेरा रब वो भी जानता है, उससे किधर छुपेंगे। तो सोचें दिल के अंदर बातें छुपा के हम सोचते हैं, हमने सारी दुनिया से छुपा ली, किसी को क्या पता मेरे दिल में क्या बात, किसी को ना पता हो सही, उसको तो पता है। तो तुम जो जोर से बोलते हो ना, वो तुम ये कमरे में नहीं सिर्फ बोलते, घर में नहीं सिर्फ बोलते, उसकी गूंज कहाँ तक चली गई, आसमानों में भी सुनी जा रही है। ये जो तुम्हारे दिल में बातें हैं ना, दिल ही दिल में बातें करते हो, सोचते हो अच्छा ऐसे करूंगी ऐसे करूंगी, उसने ये कहा उसको ये कहा उसको ये कहूंगी, वो उन बातों को भी सुन रहा है अल्लाह। और जो अभी आई भी नहीं, दिल में ही नहीं आई, ख्याल ही नहीं पैदा वो उसको। कभी कभी हम ये कहते हैं ना, आई डोंट नो हाउ टू से इट, मुझे नहीं समझ आ रही मैं किस तरह बताऊं, मुझे मतलब एक्सप्लेन नहीं किया जाता ना इंसान से, अपना आप एक्सप्रेस नहीं किया जाता, किसी से समझ नहीं आती बयान कैसे करें, कभी कभी ऐसे बेबस हो जाते हैं ना हम, कैसे किसी को अपना दिल का हाल बताएं। अब बाज दफा वर्ड्स ही नहीं होते उसके लिए, बाज दफा वर्ड्स समझ नहीं आते हम, जाहिर है इतने इंसान एक कमजोर सी मखलूक है, लेकिन अल्लाह ताला के लिए तुम्हें उससे बात करने के लिए ना कोई वर्ड्स लाने की जरूरत ही नहीं, कि तुम इजहार करो तो फिर तुम कुछ बोलो तो उसको पता चलेगा। आप जिस भी सिचुएशन में जिस भी चीज से गुजर रहे हैं, जो रातों को आंसू आप बहाएं, जो दिल्ली दिल में बातें करें, जो दिल्ली दिल में दुआएं मांगे, जो वो आह है ना जो दिल से निकलती है, वो तक उसके अर्श तक पहुंच जाती है, सुभान अल्लाह अकबर। आसिरु कौलकुम अव इजहरु भी इन्नहु अलीमुन बिज़ाति सुदूर, तुम ऊंची बोलो या आहिस्ता बोलो, वो तो तुम्हारे दिलों के अंदर के हालों को भी जानता है। तो कभी ये ना सोचे कि अल्लाह ताला से बात करते हुए कि मैं कैसे उसको बताऊं, मैं कैसे दिल का हाल बयान करूं, वो सब कुछ ही जानने वाला है, जहां पे भी हूं, जिस वक्त भी हूं, जिस जगह भी हूं, जिस हाल में भी हूं, ऊंची बोले दिल में बोले। कभी कभी मजमों में बैठ के इंसान मुंह से नहीं बोलता, लेकिन दिल में कोई बात कहता है, अल्लाह ताला उसको भी सुनता है। अल्लाह हू अकबर।